الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میں مختصر سے بات کروں گا لیکن گھر گھرستی سے بات کروں گا گھر کے ماحول سے بات کروں گا تاکہ ہمارے گھروں میں پیار و محبت مدوت جس طرح کہتے ہیں وہ باقی رہے وہ قائم رہے وہ بڑھتی رہے آخر کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ماں باپ میں لڑائی یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ کا ادب کر دو بولتی ہے کہ میرے ماں باپ کا تم تو ادب کرو کہیں بیوی انڈر پریشر ہے تو کہیں شوہر انڈر پریشر ہے یعنی سب آپس میں ایک دوسرے کو انڈر پریشر لینے میں لگے ہوئے ہیں وہ بولے کہ میری حکومت اور بولے میری سلطنت ہمارے ایک چٹکلا والا مشہور ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی نوجوان کی تو جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کو اس کے دوستوں نے کہا کہ دیکھ ہم نے فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ مرغا چھپا کر رکھا ہے مرغا کیوں چھپا کر رکھا ہے بولا تو جانا اور مرغے کو نکالنا اور مرغے کی گردن توڑ دینا بولے اس سے کیا ہوگا وہ تیرا روپ بیٹھے گا اس کو لگے گا کہ یہ بہت غصے والا آدمی ہے تیرا گھر چلے گا پہلی رات کو روپ ڈال دے اچھا وہ اندر گیا اب اندر جا کر بیٹھا مرغا بولے ہی نہیں مرغا ڈھونڈے تو ملے ہی نہیں بولا مرغا کدھر چلا گیا اب نئی نویلی دلہن دی اس نے اس کو بھی پریشانی ہو گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا میں نے تو نارمل آدمی سے شادی کی تھی کہ حضور کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہ مرغا ڈھونڈ رہا ہوں تو مرغا ڈھونڈ رہے ہیں اچھا بولا میں نے گردن توڑ کے سائڈ میں رکھ دیا ہے آپ سمجھ گیا جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا تھا تو ہمارے یہاں یہ ٹریننگ بڑی عجیب ہے ماں باپ کہتے ہیں شوہر کو دیکھ دب کر نہیں رہنا جوڑوں کا غلام بن کے نہیں رہنا کیونکہ اپنے یہاں تو بیوی کا حق ادا کرو تو جوڑوں کا غلام بن جاتا ہے بیوی کا غلام بن جاتا ہے ماں باپ اس کو تانا دیتے ہیں بیٹے کو بیوی کا ہو گیا تو بیوی کا ہو ہی جائے گا نا آپ نے شادی کرائی ہے اس کی آپ نے تو شادی کرائی ہے لاکھوں روپے خرچہ کیا کہ تو بیوی کا ہو جا قبول قبول آپ ہی نے تو کرایا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے میں اس کا ہو گیا میں اس کا ہو گیا میں اس کا ہو گیا اب جب یہ بات مانتا ہے یہ اس کا وہ خوشی کا خیال کرتا ہے تو ہاں ہمارا بیٹا چلا گیا تمہارا بیٹا کدھر چلا گیا تم نے خود بھیجا ہے اگر یہ پرابلم اچھا ماں اپنی بیٹی کو سکھا کر بھیجے گی دیکھ دب کر نہیں رہنا دیکھ یہ نہیں کرنا دیکھ وہ نہیں کرنا اگر ساتھ ایک بولے تو دو بولنا نن کر دو تو گھاس ہی نہیں ڈالنا اب اتنا اس کو اس کی تیز تلوار کر کے بھیجے تو وہ بیچاری آ کر گھر میں کرے گی کیا ہمارے یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب میں نے جو اس وقت موضوع لیا ہے نا معذرت کے ساتھ کیا امیر کیا غریب کیا کچی بستی والا کیا پکی بستی والا کیا بنگلہ کیا کنگلا تقریباً سبھی اس میں مبتلا گھروں کے مسائل عموماً سب کے ساتھ لگے ہوئے تو کہتے ہیں کوا جہاں بھی ہوگا کالا ہی ہوگا سفید کوا کا ڈھونڈو گے یہ جھگڑے گھروں کے اس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں مجھے حال میں ہمارے دارالفتاء اہل سنت سے پتا چلا کہ ہمارے ملک میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں اب گھر ٹوٹ کیوں رہے ہیں میں اس کے وجوہات پر غور کرتا رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار جھگڑا ہے کیا میں نے کبھی کبھی سوچا میں نے جھگڑے کی وجوہات کیا ہیں اب ہم تھوڑی سی اس کا جائزہ لیتے ہیں جھگڑے کا ایک سبب ہے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا یہ بہت سیریس میٹر ہے واقعی یہ سیریس میٹر ہے میں اس کو مانتا ہوں اب وہ کیوں پرابلم ہے کہ وہ دونوں کو حقوق ہی نہیں پتا دونوں نے حقوق پڑھے ہی نہیں ہیں یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری سے پہلے جو کلمات ارشاد فرمائے جو آخری آخری کلمات آپ کے بیان کیے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، یہ تمہارے ہاتھوں میں باندھی آئے اور تم نے اللہ کے نام سے لیا، اس طرح کر کے اس خلاصے کی روایت ملتی ہے. یعنی عورتوں کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بڑی تاکید فرمائی ہے. خالی یہ نہیں کہ عورت مرد خالی کہتا رہے کہ جناب تمہیں نہیں پتا شور کا کیسا مرتبہ ہے، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شور کو سجدہ کرے، یوں کر کے ہم کو ساری یہ سب ہم کو باتیں یاد ہیں، مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. تو ہم چونکہ حقوق نہیں جانتے، اس کو حقوق زوجین کہتے ہیں. شوہر کو بیوی کے حقوق یاد ہونے چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ میں جسے بیاہ کر گھر لا رہا ہوں اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے میرے پکانے کے تعلق سے، بہت سیریس بات کر رہا ہوں، میرے پکانے کے تعلق سے، میرے کپڑوں کے تعلق سے، میرے کھانے کے تعلق سے، میرے آرام کے تعلق سے، میری بیوی کیا رائٹ. ایک اسلامی حقوق کی میں بات کر رہا ہوں، بعض اخلاقی ذمہ داریاں، بعض شرعی ذمہ داریاں، ان سب کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا سکیں، ہم اس چیز کا تقاضا کریں جس کی کا تقاضا بنتا ہے. اچھا پھر اگر یہ کمبائنڈ فیملی ہے تو ایک اور پرابلم، ساس کہے یہ میرے حکم پر چلے گی، یہ اس کا ایک اور پرابلم، یہ میرے حکم پر چلے گی. اچھا کب چلے گی؟ یہ ہفتہ 10 دن کے اندر چل جانے چاہیے. محترمہ 20 سال یہ اپنے باپ کے گھر پر گزار کر آئی ہے، اس کو بدلنے کے لیے 20 مہینے تو دو نہ، 20 دنوں میں ریموٹ کنٹرول پر یہ چلنی چاہیے. کیسے چلے گی؟ اب چلانے کے لیے بیٹھو تو یہ اپنے شوہر کو بولے گی کہ بھائی تمہاری ماں کو سمجھاؤ، تمہارے باپ کو سمجھاؤ، یہ تو میرے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب شوہر بولے کہ میں سمجھانے جاؤں، اب شوہر گیا سمجھانے کے لیے ماں باپ کو کہ وہ امی وہ ابو چپ بیٹھ، تجھے نہ سمجھ پڑے، تو نے گھر چلایا، اب وہ کیا بولے؟ ہم کو پتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. تم کو کیسے پتا اس کو کیسے چلانا ہے؟ ہفتہ ہفتہ 8 دن میں کیسے پتا چل گیا؟ اب وہ جا کر بیوی کو بولے گا ماں نے سنا نہیں، تمہیں کیا کرو، جا کر اپنی ماں باپ سے بات کرو. ایسے موقع پر میرے نزدیک دنیا کا مظلوم ترن آدمی جو ہے نا وہ شوہر ہوتا ہے، جو ادھر جائے تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ادھر جائے تو بیوی پیستی ہے. اب یہ کرے تو کیا کرے؟ اس کو حکمت سے کام لینا پڑے گا، اس کو دانائی سے کام لینا پڑے گا. ماں باپ کے آگے عاجزی کر کے ماں باپ کا ذہن بنانا پڑے گا، امی میری بیوی ہے، کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ اس انداز سے آئی ہے، اس کو ڈھلنے میں ٹائم لگے گا، اس کی مجبوری ہے، اس کی کیونکہ شوہر ہی اس کا اسپوکس پرسن بنے گا نا بھائی گھر میں، کون بنے گا؟ یہ بولنے بیٹھے گی تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. وہاں وہ بیوی کو تسلی دے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ میرے ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں، تو شوہر کا کام ہے کہ اپنی بیوی کو جا کر کہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو ٹینشن نہیں لے، اس کو دھکا نہ مار دے کہ میں کیا کروں، جاؤ تم جانو میرے ماں باپ جانے. آپ کے ماں باپ سے بیاہ کر تھوڑی آئی ہے، وہ آپ سے بیاہ کر آئی ہے. آپ کا کام اسے پروٹیکٹ کرنا، آپ کا کام ہے اس کو تسلی دینا، اور والدین سے اس کی سلو کرانا. ہاں اگر بیوی غلطی کری تو اس کی اصلاح کریں کہ آپ یہ غلط کر رہی ہو، آپ یہ غلط کر رہی ہو، آپ یہ غلط کر رہی ہو. مگر یہ ہوگا کب؟ جب ہم حقوق جانیں گے، رائٹس آف وائف، رائٹس آف ہسبینڈ. جب تک یہ نہیں اندازہ ہوگا نا تب تک ہوگا کچھ نہیں. اس کے لیے بس دو چیزیں میں عرض کروں گا، ایک ہے برداشت اور ایک ہے نرمی. یہ مرد کا کام ہے، کیونکہ میرے سامنے تو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر یا تو بڑے ہیں یا اتنے نوجوان ہیں کہ شاید ان کی شادیاں ہو جائیں گی یا ہونے والی ہوں گی یا ہو گئی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے میں ان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں گا، بولیں گے یار کوئی تو ہے، کاش میرے ابو آج میرے ساتھ ہوتے. ایسے بھی نوجوان ہوں گے جو شاید سن کے سوچ رہے ہیں یار کاش ابو میرے ساتھ ہوتے، کہ بھی رہتے میں آؤں تو میں نے منع کر دیا، ابو آپ رہتے تو میں جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ آج یہ میری فیور کی باتیں کرے گا. تو یہ بےچارہ نوجوان تو ہمارا گیا نا، وہ ذرا بھی جا کے بات کرے گا وہ جوڑوں کا غلام، بیوی کا غلام بن جائے گا. وہاں جا کے بیوی سے بات کرے گا بولے گا تم اپنے ماں باپ کی سنتے ہو، میری سنتے ہی نہیں ہو. وہ سنے تو کس کی سنے؟ وہ اللہ سے دعا کرے، ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ دلوں کو بدل دے، میرے حالات اچھے کر دے، میرے والدین کا دل نرم کر دے، میری بیوی کا دل نرم کر دے. تو یہ بات اس وقت میری بات صرف آپ ہی لوگوں سے، بیوی سے نہیں، عورت سے نہیں ہے، ان سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے ہیں ہی کہ میں ان سے بات کروں. اتنا ضرور کہوں گا कि जिस औरत ने सब्र किया है ना उससे घर पर राज किया है। शुरू के दिनों में अमूमन तकालीफ हमेशा आती है, नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूं, आती है, मगर जिससे सब्र किया, हिम्मत से काम लिया, घर टूटने नहीं दिया। हमारी इस्लामी बहनें जल्दी करती हैं, घर तोड़ देती हैं, मैं नहीं रहना। जब जिसके पास दूसरा दोबारा जाएगी तो वो कौन से मतलब के जरूर थोड़ी है कि वो ऐसे ही हो, वो सोचते ऐसे भी चार कदम आगे हो तो बोलेगी काश के मैं वहीं रहती, तो घर थोड़ी बदलती रहेगी, कोई कार थोड़ी है, बीवी मियां बीवी है, इस तरह थोड़ी बदला जाता है घर। तो सब्र और बर्दाश्त, नरमी, ये मेन काम है। और टाइम गेटिंग, वक्त लिए, वक्त को निकालें, इंशाल्लाह वक्त के साथ चीजें बन जाती हैं। इसमें एक और बात मैं कहूं कि सम टाइम औलाद हो जाने के बाद हालात बदल जाते हैं, औलाद होने तक का इंतजार करें, वालिदैन के साथ उससे सुलूक करके थोड़ा उनको नरमी के साथ समझाएं कि ये प्लीज आप ये ना करें, प्लीज ये ना करें, प्लीज ये ना करें, तो अपने माँ बाप को समझाएंगे ये सब। औरत को चाहिए कि अपने ससुराल की बात अपने मेके में ना करें, वहां बात करेगी तो वहां हमेशा तकरीबन की बात कर रहा, मेरे साथ ये हुआ, माँ बाप कभी लड़की के नहीं पूछते कि तूने सामने क्या जवाब दिया था, वो कभी बोलेगी थोड़ी कि मैं भी दो बातें सुनाकर आई हूं, अम्मी बेटी तो मैं आपकी हूं ना, ऐसे थोड़ी सुनकर आऊंगी, दो बातें सुनाकर आई हूं, तो फिर अम्मी बोलेगी शाबाश मेरी तरबियत सही बोल रही है। वो ऊपर रहकर माँ पे बेटी का घर तोड़वाती है, ये शाबाशिया देने का टाइम नहीं होता। उम्र पर यह होता है कि बेटी जब माँ बाप के घर आती है ना तो अपने शोहर को या अपने ससुराल वालों को दबाने की कोशिश करती है कि भाई मैं यहां आ गई हूं। ऐसे मौके पर मेरी दरखास्त है कि माँ बाप को चाहिए कि कभी अपनी बेटी की फेवर ना करे, क्या बेटा पहले ससुराल जाओ, शोहर के साथ बैठ के बात करो, घर बैठकर शोहर को ब्लैकमेल मत करो, उसको मॉरली तौर पर आप अंडर प्रेशर मत लो। ये मैं फैमिली, मेरा टोटल फैमिली टॉपिक है ये चीजें जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। अगर इस तरह की कुछ हिकमतें बीवी के माँ बाप, शोहर के माँ बाप, शोहर और बीवी, अगर ये हिकमतें हम इख्तियार करें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि शोहर के माँ बाप का बड़ा किरदार है। मैं मिसाल देता हूं, हमारे ज्यादातर हमारे कल्चर में बहुएं साथ रहा करती हैं। मैं वैसे मशवरा देता हूं, ससुर को हमेशा रिजर्व होना चाहिए, ससुर को रिजर्व होना चाहिए, वो हेड ऑफ द फैमिली है, रिजर्व होना चाहिए, मगर खुश अखलाक होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करे, काम की बात करे, और उस बहू को ये रियलाइज कराए कि तू जिस घर में आई है बेटी, मैं बाप उस बाप से कम नहीं हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उसको ये रियलाइज कराए मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। अरे बेटी का हौसला बढ़ जाता है कि मेरा ससुर मेरे बाप की तरह मेरे साथ खड़ा है, लेकिन कीप डिस्टेंस, ये मेरी बात समझने की कोशिश करें, बिल्कुल उसमें मतलब कि गैप रखें और एक फासला रखें, एक हिजाब रखें, ताकि फ्रीली निजाम ना हो, ये मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं। तो शोहर के जो वालिदैन होते हैं ना, इनका बड़ा किरदार है, मैं आपको इसका किरदार अर्ज करता हूं। जब बीवी परेशान करती है ना, कुछ टाइम पर नहीं उठती, पकाने में कमजोरी है, कपड़े धोने में कमजोरी है, घर के दिगर के यही झगड़े हैं, पकाती सही नहीं है, टाइम पर उठती नहीं है, कपड़े धोती नहीं है, पोछा लगाती नहीं है, क्योंकि बहू तो लाए नहीं थे, ये तो मासी लाए थे, काम वाली लाए थे। हम तो ये पूछते कि पकाना आता है, हमने कभी ये पूछा कि नमाज पढ़ने आती है, हमने पूछा कपड़े धोने आते हैं, हमने कभी पूछा कि ये इसके अखलाक कैसे हैं, कभी नहीं। नॉर्मली हमारे ये नहीं पूछा जाता, हमारे यहां तो बाप पहले की औरतें तो प्याज कटवा के देखती थी कि छिलका सही उतारती है। मैं मेहमान हूं, मेमन कम्युनिटी का, मुझे पता है कि हमारी कम्युनिटी में बड़े मसाइल हैं, लेकिन सीधी बात है कि शायद ही कोई कम्युनिटियां बची हुई हो, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, कोई खुलता है कोई नहीं खुलता। तो अगर ऐसी कोई बहू खुदा ना करता आ जाती है जो प्रॉब्लम है, मेरी दरखास्त है, यहां बड़े बूढ़े भी बैठे हुए हैं, लड़के के माँ बाप को चाहिए कि बेटे से शिकायत ना करे, ये झगड़ा कदर फैलाएंगे हम लोग। अच्छा शायद सुसर साहब का तो आ जाएगा, अच्छा सुसर साहब का भी जिगरा किधर से आएगा, उसको थोड़ी पता घर में क्या, वो जब रात को आता है तो उसकी बीवी उसको बोलती है कैसी बहू आ गई है, अब वो कान लगाकर सुनता है कैसी बहू आ गई है, अच्छा ऐसी आई है, अच्छा उसके पास भी इतनी तौफीक नहीं है कि जाकर अपनी बहू उसका को क्लेरिफिकेशन ले, जो उसकी बीवी ने बोला वो सच है, हालांकि बीवी को पूछो कि मैं कैसा हूं तो बोलेगी तू अच्छा आदमी नहीं है, खुद बीवी के उसके बारे में कमेंट अच्छे नहीं है अपने शोर के मामले में, जिसको ये मानने को तैयार नहीं है।
कि नहीं मैं बुरा आदमी नहीं हूं। भाई बीवी बोली मान लो तो बुरा आदमी है। जब बीवी कह रही है तुम्हारी कि तुम्हारी बहू बुरी है तो तुमने मान लिया। बीवी कह रही तुम भी बुरा है मानो, नहीं ये नहीं मानूंगा, ये झूठ बोल रही है। तो बहू के मामले में गलत बयानी नहीं कर सकती। हमें मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। आपके घर में एक पढ़ाई बेटी आई है, अब इससे जो प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी जोजा को जो अब थोड़ी बड़ी बुरी हो जाती है, बात सास से बहुत अच्छी होती है, बेटी से बढ़कर बहू को प्यार देती है और लिहाज रखती है। बास बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, क्या बेटी ने घर का काम किया होगा संभाला होगा जो बहू ने आकर अपने ससुराल में संभाला हुआ है। मगर ये थोड़े हैं, ये थोड़े हैं, ज्यादा वो हैं जिनका मैं कह रहा हूं, ज्यादातर ये प्रॉब्लम है। अब है ये कि अगर बहू का प्रॉब्लम आया है ना, मेरी दरखास्त ये है माँ बाप सब्र करें, शोर को ना बोले, बेटे को ना बोले आने दे इसको, बेट देख कैसी है, तो बोलेगा मैं थोड़ी लाया था तुम लाए थे, तो मैं फोटो दिखाई दी मैंने बोला ठीक है ले आओ, मुझे क्या पता था कौन आई है, फिर अपना मुंह इतना सा हो जाएगा। हम अच्छा लड़के को हम क्या चाहते कि लड़का लव मैरिज करके लावे। हम हमारे यहाँ नॉर्मली तो अरेंज मैरिज है ना, माँ बाप तलाश करते हैं, खानदान का पूछते करते हैं, बेटे के साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ शक्ल सूरत की कुछ सूरत बन जाती है, लड़का बोलता है ठीक है अम्मी अबू जैसी आपकी मर्जी, नॉर्मल हमारे जनरल ऐसा ही है। अब लाए हम लोग हैं तो सुनाएंगे बेटे को देख कैसी आई है, बोलेगा मैं तो नहीं लाया हूं, मैंने तो बोला था उसको लेकर आओ, तुम लाए ही नहीं, तुम इसको लेकर आ गए। तो ये इसमें माँ बाप का बड़ा किरदार है। जो शिकायत करेंगे वो जाकर अपनी बीवी से लड़ेगा, वो बोलेगी मैंने नहीं किया, अब मैं आपको बताऊं, बोलेगी मैंने नहीं किया, दूसरा जुमला शायद बोलेगी तुम्हारी माँ झूठ बोलती है। अब ये माँ को जाकर बोलेगा कि माँ मेरी बीवी के लिए तो झूठी है, ये भी नहीं हो सकता, सफाई कहां से आएगी, अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी। अब ये जितनी मैं आपको बातें बताऊं, क्योंकि मैं हम एक तंजीमी लोग हैं, हमारे पास मसाइल आते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मसाइल आते हैं, जब तलाके हो जाती हैं तो फिर आता है शोर, हुजूर गुस्से में दे दी, तो प्यार में कौन तलाक देता है, क्या चाय बहुत अच्छी थी, खाना तूने ऐसा बनाया कि ऐसा कभी बनाया नहीं, जा तुझे तलाक, कौन देता है ऐसा, लड़ाई में तलाक देता है, गुस्से में बंदा तलाक देता है, फिर आगे कहे कि हुजूर कुछ है सूरत, बकरा काट के गर्दन अलग करके बोलो मौलाना जरा मिला कर देना, कोयला कब धुला है भाईजान। अब जो तलाक जो हो गई तलाक, जिसको हम कहते हैं कि अब जुदाई होनी होनी है, तो ये बात मेरी बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो भी याद करें, हमारे यहाँ एक कल्चर ये भी है जो मैं आपको बहुत ये बात है जो मैं बयान करने जा रहा हूं, कि बड़े बूढ़े हमारे खानदानों के बाद खानदानों के चलो ये मुफ्ती मौलाना के पास जाने भी नहीं देते, चलो आइंदा नहीं करना, अरे आइंदा नहीं करना बाबा जी क्या हो गया, तलाक दे दी है, तीन तलाके पड़ चुकी, तुम्हारा बेटा तीन तलाके दे चुका, अब बोले आइंदा नहीं करना, आइंदा आइंदा नहीं, आइंदा नहीं करना, इसको शादी क्या बोला, आइंदा शादी नहीं करना, वरना ये अब रह नहीं सकते साथ, बड़े बूढ़े साथ रख लेते हैं कि नहीं जाओ बोला। अब तलाक हो गई, अगर वाकई तलाक हो गई वो बात तो तलाक के मुगलता देते हैं, तलाक देने का भी तरीका नहीं आता हमारे यहां, मैं आपको बताऊं, एक दे दो दे मतलब बारी बारी भी दे, ये बारी बारी भी नहीं है, एक साल 1 2 3 तू जा, अरे भाई इतनी जल्दी क्या थी, तलाक का मसाइल नहीं पड़े, तलाक के अहकाम नहीं पड़े, अगर खुदा ना खासा देने की जरूरत पड़ गई तो कैसे देना है, कोई स्पेस कोई टाइम लिमिट कुछ भी नहीं, नथिंग, यूं घर टूट जाते प्यारे स्टैंड भाइयों। तो अगर खुदा ना खासा घर के हालात खराब है, मैं आपको वाकई कहता हूं, जो माँ बाप किरदार अदा कर सकते हैं ना लड़के के माँ बाप, वो बहुत अहम किरदार है। लड़की के माँ बाप का ये काम है, घर तोड़ रही है तो घर नहीं आना, ये कहकर थोड़ा सा डरा कर भेज दे, घर तोड़ कर आना है तो घर नहीं आना, यू घर आ एक एक महीना रुक हम तेरी खिदमत करेंगे, लेकिन लड़कर आएगी घर तोड़ कर आएगी तो हमारे घर तेरे लिए बंद है, इसका जहन बन जाए कि मैंने शादी के बाद इसी जगह रहना है, वरना छोटी छोटी बातों में रूठ रूठ के माँ बाप के घर चली जाती है और फिर परेशानी पैदा होती है। तो लड़की के माँ बाप अपना किरदार अदा करें, लड़के के माँ बाप अपना किरदार अदा करें। अब एक प्रॉब्लम आता है कि लड़का पसंद की शादी करता है या बेटी पसंद की शादी कर लेती है, अब ये एक नया प्रॉब्लम, अब इनके दोनों के जो झगड़े होते हैं ना, तो ये दोनों माँ बाप से बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि माँ बाप का जवाब पता है क्या होता है, खुद भुगत, खुद भुगत। तू लाया है, तू लाई है, तूने किया था, अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि जल्दी तलाक हो जाएगी, अल्लाह ना करे। वो हो गया ना, कुप्पू मिला, शादी हो गई, अब हो गया ना, अब क्यों बिचारों के घर तोड़वाने पर लगे हो भाई। बेटी को बोलो बेटी को प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हूं, बेटे को बोलो बेटा को प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा। ये मैं आपकी हमारी बात कर रहा हूं, मैं भी बहु बेटियों वाला हूं, मेरे भी पोते नवासे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारा बहुत अहम किरदार है, मैं एज ए मतलब एक घर का जो सरबरा है ना, जिसको सुसर साहब कहते हैं, सुसर साहब, उतना बड़ा घर का लीडर, इससे बड़ा लीडर कौन है घर का। अब उसकी अपनी प्रॉब्लम है कि उसने सेठानी को लीडर बनाया हुआ है, घर की सरबराई उससे किसी और के सुपुर्द की है, ये भी हमारा रॉन्ग नंबर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है रिजाल कवामून अला निसा, मर्द अफसर है औरतों पर, हमने औरतों के हाथ में अफसरी दे दी। शादी का मामला तुम देख लो, तुम देख लो, तुम बात कर लो, तुम ये कर लो, बिल दे दो, पैसे ले लो, मेरे को कुछ मत बोलो। ओ भाई पूरा गुलशन उजड़ रहा है, बड़े मियां आप कब बीच में आओगे, कब संभालोगे, बच्चे उजड़ गए, बच्चियां उजड़ गई, बहू पर जुल्म हो रहा है, बेटे का घर टूट रहा है, आप देख लो, क्यों देख लो। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, इसके हाथ पे निजाम नहीं दिया जाता, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग से घर चलता है। भाई तलाक का हक मर्द के हाथ में, बीवी के हाथ में है नहीं है ना, आप अथॉरिटी हो, अपने बच्चों को संभालें, अपनी बहू को संभालें, अपनी बेटियों को संभालें, और ये खुद मोहतरमा को भी संभालें जो आपको इतने अरसे से संभाल कर बैठी है। इसकी देखे ना, ये बीवी है तो हिम्मत वाली ना, जो अपने को संभाले वो हिम्मत वाली नहीं होगी। यूं तो ये अपनी पोजीशन को समझें और अपने बच्चों की इन तबीयतों को जानें, इनके घर टूटने से बचाएं। मैं आपको बताऊं प्यारे समझो, जब तलाक होती है ना, जो सबसे बड़ा जो करेक्टर सरवाइव करता है ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसके साथ होता है, वो बच्चा होता है जो इन दोनों के दरमियान हो चुका होता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। वो शोर थोड़े अरसे के बाद दूसरी शादी कर लेता है, वो इद्दत गुजार कर दूसरी शादी कर लेती है, फंसा कौन, वो बच्चा, वो बच्ची जो इन दोनों के बीच में आ गया। ये दोनों लड़ते हैं, ये भी नहीं सोचते कि यार हमारी तलाक के बाद हमारी औलाद का क्या बनेगा। वो बोले सोतेली माँ, वो बोले मेरे को ना चले, बल्कि कंडीशन होती है मैं शादी तब करूंगी जब तेरा बेटा नहीं आएगा। और लड़की वाले, लड़की की जब शादी होती है, कहते हम शादी इसलिए करेंगे कि ये बेटे को अपने साथ नहीं रखेगी। अब ये तो रुला ना बेचारा, ये तो छोटी बच्ची रुल गई, छोटा बच्चा रुल गया, एक या दो है हमारे पास, केसेस है, ये केसेस है हमारे पास। जब फिर प्रॉब्लम, दोनों सुसाल लड़े, अब ये दोनों अलग दुश्मनियां। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, जब मियां बीवी में झगड़ा होता है ना, मियां बीवी में झगड़ा, शैतान समुद्र के बीच में खुशी के मारे कूदता है, नाचता है, क्योंकि ये दो मर्द और औरत नहीं लड़ रहे, ये दो खानदान लड़ रहे हैं, ये दो कुंबे लड़ रहे हैं, ये दो कबीले लड़ रहे हैं, ये दो कम्युनिटी लड़ रही हैं, ये कभी एक दूसरे से मुंह नहीं मिलाते, सलाम नहीं करते, इतनी दुश्मनी आपस में कर लेते हैं, और नतीजा बाहर तलाक हो जाएगी तो पूछे बोलेंगे लड़की यूं थी, बहू यूं थी, बहू यूं थी, ऐसा करेंगे कि कहीं शादी ना हो। और वो बोलेंगे लड़का, अल्लाह अल्लाह, हमको तो चरसी मवाली मिल गया था, वो थोड़े दिनों पहले तो चांद का टुकड़ा था, अभी चांद को गहन भी लग गया, वो थोड़ी देर पहले वो पड़ी थी, अब चुरेल हो गई। और माज़ अल्लाह सुमा, माज़ अल्लाह तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। इसका मैं आपको हल बताता हूं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी का घर टूट जाए ना, मैं दोनों फरीकेन को मशवरा देता हूं कि आपसे, ये भी हमारे माशरे की एक मुसीबत है, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों टूटा, अरे तुमको क्या पिंचा था यार, चुप रहो ना, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, खाली खाली छेड़ते हैं ना, ये हमारे यहां ये चलता है। खैरियत क्या हुआ, क्यों टूटा, लड़की सही नहीं होगी, लड़के ने कुछ किया होगा। अब ये वैसा बैठे बैठे चलती पत्ती मतलब बिल्कुल मिट्टी का तेल छिड़काओ, आप कहीं चिंगारियां फेंक रहे होते हैं। अब आपको समझाता हूं, इस सोसाइटी के लोगों को समझा रहा हूं, अगर खुदा ना खासा घर टूटे ना, एक जुमला सीख लें, ज़हनी हम आंगी नहीं थी। क्या कह दें भाई, ये तो बेस है ही ना, अगर ज़हनी मिल रहे होते तो तलाक की होती। जो भी झगड़े हुए ना, ज़हनी हम आहंगी ना होने की वजह से हुए, सोचे नहीं मेरी ज़हन नहीं मिले, खत्म, क्लोज करें यार। तो ज़हनी हम आहंगी नहीं थी, नहीं चल सका, बस दुआ करें अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, कहीं के निकल जाए, क्योंकि हमारे यहां ऐसे शायद होंगे कि जो मेरी बात को पिक कर लेंगे। दो मियां बीवी में झगड़ा था, तो उसके दोस्त ने कहा कि खैरियत तो है, सुना है बनती नहीं है, क्या प्रॉब्लम है तेरा बीवी के साथ? तो उसने कहा कि मैं गैर मर्दों से बीवी की बातें नहीं करता। बड़ा गैरतमंद जवाब दिया भाई। खैर थोड़े दिनों में घर टूट गया, तलाक हो गए, और उसको तो वैसे ही वो था एक ऐसा आदमी। अच्छा अब तो बता, अब तो तेरी बीवी नहीं है, क्या हुआ था? तो गैर मर्दों से गैर औरतों की बातें नहीं करता मैं, कैसी नाक काटी इसकी। हमारे पास ऐसा जवाब है? हम तो यूं फाइलें खोलेंगे, अबे तुम्हें क्या बताऊं क्या था यार। अब सोचो यार, किसी औरत पर, किसी लड़की पर तोहमत लगाओगे, बोतान बांधोगे, उसको रुस्वा करोगे, बेइज्जत करोगे, बेचारी का कहीं रिश्ता नहीं होगा, लड़के का कहीं रिश्ता नहीं होगा। तो ये हमारे घरों के भी, अभी तो मैं बहुत मुख्तसर और बहुत झलकियों में आपसे बातें की हैं, हाइलाइट्स आपके साथ शेयर की हैं, और हल मैंने आपको ये दिया है कि सब्र करें, बर्दाश्त करें, शिकवा शिकायत ना करें। औरत बीवी को भी मैं समझाऊंगा कि अगर उसको प्रॉब्लम है लड़के के माँ बाप के साथ, मेहरबानी करें, मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़कर, जब भी देखे टीवी पर मुझे, मीडिया पर मेरे उसके आगे हाथ जुड़े हुए, प्लीज शोर से बात मत करो। ये रोज घर पर आएगा, अब रोज आना, वो घर पर आना बंद कर देगा, यार मैं बाहर मगज मारी घर जाऊं तो बीवी मेरे पास फाइलें खोलती है। अब ना बात करो, अब बर्दाश्त करो, सब्र करो, इंशाल्लाह एक दिन ये शोहर आपकी मोहब्बत को तस्लीम कर लेगा, आपके अखलाक को तस्लीम कर लेगा, और आप घर में अच्छी तरह रहोगी। होता है बाज़ अवकात क्या अमूमन यही होता है, घर में अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी नहीं बनती, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग दुनिया से आते हैं। तो ये मेरी कुछ दरख्वास्तें थी, ताकि हमारे घर टूटने से बचे और हमारे घर अमन के घेवारे बने। इसमें हम अपना रोल प्ले करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें। मैं एक घर में गया था, वो चंद भाई साथ रहते थे, मैं आपसे डिस्कस करते हैं लोग, उससे कह यार हम जब अलग अलग रहते थे तो बड़ी मोहब्बत थी, जब से हम साथ रह रहे हैं ना, हम आपस में मोहब्बतें कम हो गई हैं। मैं कहा सब शादीशुदा हो? बोला हम सब शादीशुदा है। मैं रात को जाते तो फाइलें खुलती हैं? हाँ फाइलें खुलती हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट मैंने दो तीन जुमले कहे। बोला हाँ फाइलें खुलती हैं। मैंने कहा सुनना बंद कर दो, अब सुनना बंद कर दो। मैं बोला मुझे बुराई नहीं सुननी मेरे भाइयों की, मेरे भाभियों की, बिल्कुल सुनना बंद करो, सीरियस हो जाओ, आपका इंशाल्लाह घर अमन का गहवारा बन जाएगा। हम ही जब ठुक ठुक करते रहेंगे तो शोर तो होगा ना, करे ही ना, चंद दिनों में अमन हो जाएगा। वो कहना शुरू कर देगी आप सुनते ही नहीं हो। बोले क्या सुनू, गीबतें सुनू, चुगलियां सुनू, तोहमतें सुनू, गुनाह करूं? अच्छा अब नेकी और तकवा परहेजगारी की तरफ जाए, घर में नमाजें शुरू करें, घर में इबादत शुरू करें। मुझे किसी ने कहा था यार तुम ये बातें करते हो कि घर में ड्रामे ऐसे आते हैं कि सासों बहू के झगड़े हो जाते हैं, ये हम मुझे नहीं पता ऐसे आते होंगे ड्रामे जिसमें सास बहू के और घर में झगड़े और यूं तेज तर्रार औरतें और आजाद औरतें, ये सारी ड्रामे आते होंगे इस तरह के। तो देखा ये तो घरों में ये चल रहे हैं। तो मैंने कहा तो खुद ही अपने हाथों अपने पांव पर कुलाड़ा मार रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम खुद ही टीवी फिल्में दिखाकर बताते हैं कि जनाब ऐसा होना चाहिए। मदनी चैनल देखें, मदनी चैनल दिखाएं, हम तो मदनी चैनल पर ये स्पीच करते रहते जो मैं यहां बैठकर कर रहा हूं, ताकि घर ना टूटे यार। हम तो कहते हैं घर टीवी पर कई दफा आपने पता नहीं दिखाई नहीं देखा, सुना नहीं सुना। मैं तो मदनी चैनल खुद पर्सनली कितनी दफा कहता हूं कि अभी माफी मांग लो देखने सुनने वालों, अभी माफी मांगो। फिर हमें मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शोर से माफी मांगी, वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, ताकि घर ना टूटे। तो आज भी अगर खुदा ना खासा किसी बैठने वाले के घर में कोई ऐसा इशू है, तो जाकर वो अच्छे अंदाज से इसको डिफ्यूज कर दे। आपने रस्सी देखी है, रस्सी में बल होते हैं, इतनी मोटी रस्सी है इसमें बल होते हैं ना। ये रस्सी कब टूटती है? जब बल खुलते हैं या बल जलते हैं तब रस्सी टूट जाती है। मैं आपको बताऊं कि ये हमारे रिश्तों के बल कौन से हैं जो जलते हैं। ठंडा पानी ले आओ, एक बल जला, खाना गर्म नहीं है, ये दूसरा बल टूटा। कपड़े इसने क्यों नहीं किए, तीसरा बल टूटा। तेरे मां बाप ने तुझे ये सिखाया, दो बल एक साथ टूट गए। ये जो कर रहे हैं ना हरकतें, अब भाई स्त्री खुद कर लो यार, क्या हो गया, मोजे खुद ढूंढ लो, जूते खुद ढूंढ लो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाले ने पाक खुद ही दुरुस्त फरमा लिया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों का दूध खुद धो लिया करते थे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम इस तरह करते थे जैसे तुम में से आम आदमी घर के काम करता है। हम तो यूं जाएंगे, जूते उतारेंगे, ए पानी लाओ, साहब उठ के पी लो ना, कूलर खुद ही लाओ। क्या अजीब हरकत है, हम उठ के पानी पी नहीं सकते? क्या हम अपनी बीवी को पानी का गिलास भर के पिला नहीं सकते? क्या दस्तरखान की प्लेट हम नहीं लगा सकते? क्या हम नहीं उठा सकते? क्या कोई गर्म पतीली हम नहीं उठा सकते? हम नहीं कर सकते ये काम, दस्तरखान हम नहीं लपेट सकते? हमारी शान में क्या फर्क आएगी यार? वो शान बनाई क्यों है जो फर्क आए? घर में भी कोई शान होती है? घर में तो आदमी आम आदमी की तरह रहता है, इससे थोड़ी कोई शानों में फर्क आता है। सईद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन है, किसी के साथ मुशावरत हो रही थी, कोई शख्स आए थे आपके साथ मशवरा चल रहा था, उस वक्त बत्तियां तो नहीं थी, चराग होते थे, तो चराग बुझ रहा था ना, चराग बुझ रहा था, तो वो मेहमान थे जो मशवरे के लिए आए थे, वो उठे कि मैं दुरुस्त करूंगा, आपने फरमाया आप बैठे थे, आप मेहमान हैं, तो उसने कहा कि उसको फिर गुलाम को खादिम को जो मुलाजिम उनको जगा दें, तो फरमाया कि वो बेचारा आराम कर रहा है, इसको क्यों जगाऊं। फिर आप उठे, चराग दुरुस्त किया, वापस आकर बैठे और क्या फरमाया कि जब मैं उठा था तब भी उम्र था, आया हूं तब भी उम्र हूं। क्या फर्क पड़ा है? हमें अपने ऐसे जिसकी शान होती नहीं है वो अपनी झूठी शानें बनाता है। शानों वालों ने कभी शानें बनाई थोड़ी हैं। आला हज़रत देखते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। करम की बातें करो यार, नरम की बातें करो। एक शख्स खाना खा रहा था, खाया तो नमक कम, बीवी पर बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा यार छोड़ो, मैं भी तो गलतियां करता ही रहता हूं, इग्नोर। क्या किया उसने? इग्नोर किया। जब इंतकाल हुआ तो मरने के बाद उसको ख्वाब में देख के किसी ने पूछा, मा फाल अल्लाह दिखा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? क्या मुझे फरमाया गया कि तूने दुनिया में मेरे बंदी पर रहम किया, आज हम तुझ पर रहम करते हैं, मेरी बख्शिश कर दी गई। अपने मोजे अपने जुराबे खुद ही ढूंढ लो भाई, अपने रुमाल खुद ही निकाल लो, अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर लो, क्या हर्ज क्या है? नहीं भी हुए ठीक है, अल्लाह वो भी अल्लाह की बंदी है, सर में उसके भी दर्द होता है, पेड़ में उसके भी दर्द होता है, उसको भी खदमत की जरूरत रहती है। तो अल्लाह करे कि हम अपने घरों को मोहब्बत और प्यार के साथ चलाएं, अमन के गहवारे बने घर में। मैंने जो किताब में पढ़ा है इसका एक छोटा सा खुलासा कर रहा हूं, घर में हराम रोजी ना आने दें। मैंने जो किताबों में पढ़ा है कि अच्छे खासे मोहब्बतों के रिश्ते सूद की वजह से टूट गए, हराम रोजी की वजह से टूट गए, क्योंकि जब ये नहुसत घर में आती है ना, मोहब्बत उठ जाती है, इत्तिफाक उठ जाता है, इसकी नहुसत है, इसके निवालों में नहुसत है। अपने रोजगार को हलाल पाकीजा तैयब करें, आप जो दवाई खाएंगे इंशाल्लाह दवाई में भी शिफा मिलेगी, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो दुआ करोगे तो दुआ में भी अल्लाह शिफा दे देगा। कहते हैं मुस्तजाब दावात बनना चाहते हो, यानी कि मुस्तजाब दावात कहते हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, फरमाते हैं तो मुस्तजाब दावात बनना चाहते हो तो अपने रिस्क को हलाल कर लो, अपनी गिजा को हलाल कर लो। पेट में जब हलाल जाएगा, सिर्फ हलाल जाएगा, तो जब दुआ निकलेगी ना तो वो कबूलियत के दर्जे को पाती। तो इस तरह घर में नेकी हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, नमाजी हो, तिलावत हो, अल्लाह और उसके रसूल की याद में रोना हो, मदनी चैनल हो, मदीना मदीना हो, खुद भी इज्तिमा में आए, अपने बच्चों को लेकर आए, अपने घर की इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनों के मदनी माहौल में, इस्लामी बहनों कामों में भेजें, ताकि उनका भी जहन बने, उनका भी जहन बने कि यार मुझे शोहर के साथ कैसे रहना है, अपने ससुराल में कैसे रहना है, उसका माइंड बनाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट शादी करते हुए मैं देखा ही नहीं था कि लड़की दीनदार है या कौन है, देखा नहीं था। चलो जब जागे तब हुआ सवेरा, अभी भेजें उसको दावत इस्लामी के माहौल में भेजें, इज्तिमात में भेजें, दर्स और बयान में भेजें, वहां इंशाल्लाह आपकी उस बच्ची का, उस औरत का, उस बहू का, उस बेटी का जहन बनेगा, वो घर आकर इंशाल्लाह घर को घर संभाल कर चलेगी। और आप यहां आए मर्दों के, इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में आए, मदनी काफलों में सफर करें, इंशाल्लाह घर आपका मदीना मदीना हो जाए, घर में दर्स शुरू कर दें, एक दो मिनट का दर्स दे दें यार, खाने पर बैठे सब बेपर्दगी नहीं हो, अब पता चले दसा गांव में देवर और भाभी सब बैठे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करें, घर में बेपर्दगी ना होने दें। जेठ देवर और भाभी का पर्दा, ये घर की चार दीवारी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, जेठ देवर और भाभी का पर्दा है, और ये सख्त पर्दा है, ये हल्का पर्दा नहीं है, ये सख्त पर्दा है। आका फरमाते देवर मौत है, जिस शख्स की घर में एक्सीस ज्यादा है ना, मैं समझदार लोगों से बात कर रहा हूं, इशारे में बात कर रहा हूं, जिस गैर मर्द की घर में एक्सेस इजी और ज्यादा है वो ज्यादा खतरनाक है। बात मेरी समझ गया? ये मैं हमारे बड़ों को जो समझदार हैं, दूरंदेश है, मैंने उनको बड़ी पते की बात बताई है, जिस अजनबी मर्द की कजन है, भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जिस अजनबी मर्द की घर में एक्सेस इजी है, आसान है, उससे खतरा ज्यादा है। आपको आपकी औलाद पर भरोसा तो हो सकता है, शैतान पर कौन भरोसा करेगा? हदीस पाक में आता है जब दो अजनबी मर्द और औरत बैठते हैं, इसमें तीसरे तीसरा शैतान होता है जो इनमें हिजान पैदा करवाता है, ये ना होने वाले काम हो जाते हैं, और कानों कान पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो लेट हो चुके होते हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
مبلغ فوي